आस्ती की बात सुनकर अरुणिमा सच में हैरान हो गई थी। वो अपने आप को देख रहा था सपने में। उसने जो किया था, उसके जो बाप थे, वो उन्हीं को दोबारा देख रहा था। अरुणिमा को समझ ही नहीं आया कि वो आस्तिक को क्या कहे, लेकिन वो सहानुभूति की नज़रों से आस्तिक को देख रही थी। आस्तिक अपने दोनों हाथों से अपने आंसुओं को पोंछता है और फिर अरुणिमा के बालों को सहलाते हुए कहता है, तुम्हें फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है अरुणिमा, मैं उस गंदे आदमी को मारकर भगा दूंगा। मैं हमेशा तुम्हारी रक्षा करूंगा। मैं उस गंदे आदमी को तुम्हें नुकसान पहुंचाने नहीं दूंगा और ना ही हमारे बच्चों को नुकसान पहुंचाने दूंगा। अरुणिमा, तुम फिक्र मत करो, मैं हमेशा तुम्हारी हिफाजत करूंगा। अरुणिमा बस हैरान नज़रों से आस्तिक को देखे जा रही थी। ये आदमी उसकी रक्षा करने की बात कर रहा है, लेकिन ये रक्षा कैसे करेगा? पहले से खुद की रक्षा करनी होगी। ये इंसान तो खुद की भी रक्षा नहीं कर सकता है, तो ये अरुणिमा और उसके बच्चों की रक्षा कैसे करेगा? अरुणिमा ने आस्तिक को संभाला और उसे बिस्तर लिटाकर उसके सर को थपकी देने लगी। अरुणिमा का एहसास पाते हुए आस्तिक कब सो गया, उसे पता ही नहीं चला। दिन ऐसे ही बीत रहे थे। अरुणिमा आस्तिक का ख्याल रख रही थी और बाकी सब भी आस्तिक को कुछ ना कुछ याद दिलाने की कोशिश कर रहे थे। इसी तरीके से 15 दिन गुजर जाते हैं। भाई, आप इस फोटो को देखो, कुछ याद आया आपको? ये फोटो तब की है जब हम लोग मालदीव घूमने गए थे। प्रणाली एक तस्वीर आस्तिक को दिखाते हुए कहती है। कीर्ति भी एक तस्वीर आस्तिक को दिखाते हुए कहती है, भाई इस तस्वीर में देखो, ये याद है? ये हमारे घर की दिवाली की तस्वीर है। हम लोगों ने कितने अच्छे से दिवाली सेलिब्रेट की थी ना। पृथ्वी भी एक तस्वीर आगे करते हुए कहता है, ये वाला फोटो देखो भाई, ये कितनी अच्छी है। ये तब की है जब प्रणाली के लिए हमने बर्थडे पार्टी रखी थी, याद है? प्रणाली को हमने सरप्राइज दिया था और उसे याद ही नहीं था कि आज उसका जन्मदिन है। और जब हम लोगों ने उसे सरप्राइज दिया तो वो खुश होने की जगह रोने लगी थी। आस्तिक सबकी बातें सुन रहा था और सबको देख भी रहा था। वो सबको देखते हुए डर रहा था, लेकिन धीरे धीरे उसने सबके साथ रहना शुरू कर दिया था। इस वक्त सब सोफे पर बैठे हुए थे और आस्तिक को पुरानी बातें याद करवाने की कोशिश कर रहे थे। आस्तिक ने अरुणिमा के हाथ को कस के पकड़ा हुआ था और वो उसकी साड़ी में खुद को छुपाने की कोशिश कर रहा था। कुछ यादें उसके दिमाग में आ जरूर रही थी, लेकिन वो सब धुंधली थी, जिसकी वजह से उसकी घबराहट बढ़ती जा रही थी और उसके सर में भी दर्द होने लगा था। हालांकि अब आस्तिक बाकी सबके साथ भी उठने बैठने लगा था, लेकिन वो किसी पर भरोसा नहीं कर रहा था। हर किसी को देखकर उसे यही लगता है कि ये उसकी अरुणिमा और उसके बच्चों को नुकसान पहुंचाएगा। वो सिर्फ अरुणिमा पर ही भरोसा करता था, इसीलिए वो ज्यादातर अरुणिमा के साथ ही रहता था। धीरे धीरे आस्तिक ठीक होने लगा था। हालांकि उसकी याददाश्त वापस नहीं आई थी और ना ही वो पागलों की तरह व्यवहार करना बंद कर रहा था, लेकिन उसने खुद को साफ रखना शुरू कर दिया था और अब वो ठीक से खाना भी खा रहा था। पृथ्वी देख पा रहा था कि अरुणिमा अपना वादा पूरा कर रही है। उसने अपना वादा पूरा किया कि वो आस्तिक को ठीक करने में मदद करेगी और वो उसे कर भी रही है। अब बारी पृथ्वी की थी। उसे अरुणिमा को शारदा देवी मर्डर केस से हमेशा के लिए अलग करना था, लेकिन अगर पृथ्वी अरुणिमा से ऐसा कोई वादा नहीं भी लेता तो भी वो इस केस में अरुणिमा का नाम नहीं आने देता और इस केस को दबाकर केस बंद करवा देता। वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि वो जानता है कि माता पिता के बिना बच्चों का जीवन कैसा होता है। बाकी सब धीरे धीरे करके आस्तिक को चीजें याद करवाने की कोशिश करते थे। पुराने दिनों को फिर से दोहराया जाता था, पुरानी चीजों को फिर से बताया जाता था, जिससे आस्तिक को सब कुछ याद आ जाए। और इसी के बीच एक खबर आई जिसने सबको हिलाकर रख दिया था। नॉर्थ अटलांटिक महासागर में समंदर में तूफान आने की वजह से रजत का शिप डूब गया था, लेकिन ये इंडियन नेवी का शिप था, तो यहाँ पर सबने खुद को बचाने की और लोगों की मदद करने की कोशिश की थी। फिर भी इतने बड़े शिप के डूबने की वजह से कई लोगों की जान गई है और कई लोगों को नुकसान भी पहुंचा है। खतरे में पड़े सैनिकों के लिए जल्द से जल्द सहायता भिजवाई गई और उन लोगों ने रजत को रेस्क्यू करके जल्दी हॉस्पिटल में एडमिट करवाया, लेकिन तब तक रजत के पैरों में फ्रैक्चर आ चुका था और उसके पैरों में रॉड लगी थी। रजत ठीक था लेकिन घायल हो चुका था और जब तक उसके पैर ठीक नहीं हो जाते तब तक के लिए वो दोबारा ड्यूटी पर ज्वाइन नहीं हो सकता है। कीर्ति ने जब ये सुना तो उसकी हालत खराब हो गई, वो मौके पर ही बेहोश हो गई थी। कीर्ति पूरे 9 महीने की प्रेग्नेंट थी, कुछ ही दिनों में उसकी डिलीवरी भी होनी थी, लेकिन उसे इस तरीके से बेहोश होता देख और रजत की हालत का देख सब परेशान हो गए थे। कीर्ति को जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचाया गया और उसकी डिलीवरी करवाई गई। सब लोग इस वक्त बहुत परेशान थे। रजत जब तक घर वापस नहीं आ जाता है तो तब तक किसी को चैन नहीं आएगा। कीर्ति ने एक बेटे को जन्म दिया था। जब नर्स बच्चे को लेकर सबके पास आती है तो सब उस बच्चे को देखकर बहुत खुश होते हैं, लेकिन आस्तिक उस बच्चे को टुकुर टुकुर देख रहा था। आस्तिक ने मुस्कुराते हुए उस बच्चों को देखा और ताली बजाते हुए कहा, अरुणिमा ये देखो, ये तो हमारे आकाश और अनंत से भी छोटा है और इसने कपड़े भी नहीं पहने हैं। आस्तिक की बात सुनकर सब मुस्कुराने लगते हैं, लेकिन रजत की चिंता अभी भी सबको थी। यहाँ तक कि अरुणिमा भी परेशान हो रही थी। जब तक रजत वापस नहीं आ जाता है तब तक अरुणिमा भी बेचैन होती रही थी। ज्योति को जैसे ही रजत के बारे में पता चलता है वो सबसे पहले घर आ जाती है। बच्चे के आने की खुशी तो सबको थी, लेकिन रजत की चिंता सबको ज्यादा सता रही थी। फाइनली एक हफ्ते बाद रजत वापस घर आ जाता है। वो व्हीलचेयर पर बैठा हुआ था और उसके राइट लेग पर रॉड लगी हुई थी। उसे ऐसा देखकर कीर्ति के आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। यहाँ तक कि ज्योति भी परेशान हो गई थी। वो तो शुक्र है कि घर में बाकी सब लोग मौजूद थे जिन्होंने बच्चे को संभाल लिया था, वरना कीर्ति को संभालना इस वक्त बहुत मुश्किल हो रहा था।